एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान और आज हमारे साथ हैं हमारी विशेषज्ञ साथी।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि सोचने पर मजबूर करने वाले विषय पर बात कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये आधारित है युवाल नोआ हरारी के काम पर, खासकर उनकी किताब नेक्सस के विचारों से प्रेरणा लेकर। और ये सवाल उठाता है कि क्या जानकारी, इन्फॉर्मेशन ही हमारी पूरी कहानी की असली हीरो है?
बिल्कुल सही कहा, और ये सवाल आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दौर में जी रहे हैं। हरारी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर जानकारी नहीं हमें, मतलब होमो सेपियंस को, इस ग्रह पर सबसे कामयाब प्रजाति बनाया, तो तब क्या होगा जब ये ताकत किसी गैर मानवीय इंटेलिजेंस के हाथ लग जाए? हाँ, ये सिर्फ कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की बात नहीं रह जाती फिर। ये चर्चा समाज, सत्ता के जो समीकरण है, और शायद हमारे अस्तित्व के भविष्य तक चली जाती है। हम उस गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हरारी नेक्सस कहते हैं, जानकारी और हमारी बनाई हुई हकीकत के बीच का रिश्ता।
हाँ, तो चलिए इस सोच की यात्रा में साथ चलते हैं। अच्छा, तो पहले युवाल नोआ हरारी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग उन्हें जानते ही होंगे। इजरायली इतिहासकार हैं, दार्शनिक और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में प्रोफेसर भी।
हाँ, और उनकी किताबें जैसे सेपियंस, होमोडेयर्स और 21वीं सदी के लिए 21 सबक, मतलब दुनिया भर में पढ़ी गई हैं, सराहाई गई हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर सोचते हैं, हजारों सालों के इतिहास को देखते हैं और उसे आज की चुनौतियों से जोड़ते हैं। कमाल का नजरिया है उनका।
और नेक्सस के जो विचार हैं वो उनकी पिछली किताबों को एक तरह से जोड़ते हुए लगते हैं। जैसे अगर सेपियंस ने बताया कि क्या हुआ था, होमोडियस ने खोजा कि क्या हो सकता है, तो नेक्सस ये समझाने की कोशिश करता है कि इन सब के पीछे का इंजन यानी जानकारी का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है।
दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा कि हरारी खुद को कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं मानते, वो खुद को टेक्नोलॉजी के इतिहासकार के रूप में देखते हैं। मतलब वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि नई तकनीकें समाज और इंसानियत को कैसे बदलती आई हैं, और इसी नजरिए से वो एआई क्रांति को देख रहे हैं।
हाँ, कि ये सिर्फ एक नई मशीन नहीं है।
बिल्कुल, बल्कि हजारों साल पुरानी जो जानकारी की कहानी चली आ रही है उसका एक नया और शायद सबसे अहम मोड़ है ये।
तो नेक्सस के विचारों का केंद्रीय बिंदु क्या है, मतलब सार क्या है?
मूल विचार ये है कि मानव इतिहास असल में सूचना यानी इन्फॉर्मेशन का इतिहास है। ये सिर्फ कोई टूल या साधन नहीं है, बल्कि वो बुनियादी ताकत है जिसने हमारे समाज, हमारी सत्ता, अर्थव्यवस्था, यहां तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी गढ़ा है। सब कुछ।
हाँ, और नेक्सस शब्द वो इसी जुड़ाव को दिखाता है ना, जानकारी और हमारी वास्तविकता के बीच का वो नाजुक सा और लगातार बदलता हुआ रिश्ता।
बिल्कुल, हम जिस तरह जानकारी को प्रोसेस करते हैं उसी से हमारी दुनिया की सच्चाइयां बनती हैं, और फिर उन सच्चाइयों से नई जानकारी और नई चुनौतियां पैदा होती हैं। ये एक कभी न रुकने वाला चक्र है।
ये विचार दिखाते हैं कि कैसे भाषा के विकास से लेकर फिर लिखने की कला आई, फिर प्रिंटिंग प्रेस और अब एल्गोरिदम तक, हर बड़ी सूचना क्रांति ने हम इंसानों को दुनिया पर छा जाने में मदद की। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ।
ठीक कहा, इतिहास में पहली बार एआई जैसी एक गैर मानवीय इंटेलिजेंस इस दुनिया भर में फैले सूचना के जाल पर कह सकते हैं कि कब्जा कर सकती है। इसीलिए ये किताब या ये विचार सिर्फ इतिहास का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है। ये हमें वो गहरा संदर्भ देते हैं जिससे हम एआई जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों को शायद बेहतर समझ सकें।
चलिए इस कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। हरारी हमें पाषाण युग में ले जाते हैं। उस दौर को वो सूचना बाधा या इन्फॉर्मेशन बॉटलनेक का समय कहते हैं। हमारे शिकारी पूर्वजों के पास दिमाग तो कमाल का था, पर वो बड़ी मात्रा में जानकारी को सहेज कर रख नहीं सकते थे और न ही दूर दूर तक आसानी से फैला सकते थे। सब कुछ याददाश्त के भरोसे था,
और इसी सीमा की वजह से वो ज्यादातर 150 लोगों से बड़े समूह में लंबे समय तक टिकने वाला सहयोग नहीं बना पाते थे। इसे रॉबिन डनबार के नाम पर डनबार संख्या कहते हैं, मतलब हमारा सामाजिक दायरा,
हमारी जानकारी संभालने की क्षमता से बंधा हुआ था। बड़े समाज या शहर बनाना उस वक्त मुमकिन नहीं था।
फिर आया पहला बड़ा धमाका, लगभग 5000 साल पहले सुमेर में, जो आज का इराक है। वहां लेखन का आविष्कार हुआ, और मजे की बात यह है कि यह कविता या कहानियों के लिए नहीं हुआ था।
हाँ, ये तो कमाल की बात है।
ये हुआ था टैक्स वसूलने, अनाज का हिसाब रखने जैसी एकदम बोरिंग, मतलब नौकरशाही वाली जरूरतों के लिए।
लेकिन इसका असर जबरदस्त हुआ। लिखी हुई बात किसी की याददाश्त से ज्यादा भरोसेमंद मानी जाने लगी। इसी ने बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया। अब राजा उन लाखों लोगों पर हुकूमत कर सकता था जिनसे वो कभी मिला भी नहीं।
हाँ, कानून लिखे जाने लगे, टैक्स का सिस्टम बना, सेनाएं खड़ी हुई।
यहाँ तक कि बड़े धर्म भी तभी फैल पाए जब उनके पवित्र ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि अब ईश्वर का संदेश किसी एक व्यक्ति की याद पर निर्भर नहीं रहा, वो स्थायी हो गया।
हरारी, पैसे को भी कमाल की सूचना प्रणाली मानते हैं। सोचिए जरा, पैसा क्या है? ये भरोसे का एक सिस्टम है जो किसी भी चीज की कीमत को एक आसान नंबर में बदल देता है। इससे व्यापार करना कितना आसान हो गया। ये भी तो एक कहानी है जिस पर हम सबने यकीन कर लिया है।
बिल्कुल, पर हजारों सालों तक ये लिखी हुई जानकारी कुछ गिने चुने पढ़े लिखे लोगों जैसे पुजारी, क्लर्क, अमीर वर्ग के हाथ में ही रही। आम आदमी तो पढ़ना लिखना जानता नहीं था, वो सूचना के इस खेल से काफी हद तक बाहर था। सत्ता इन्हीं कुछ लोगों के पास सिमटी रही।
फिर आई दूसरी बड़ी क्रांति, 15वीं सदी में यूरोप में गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। इसने तो जैसे जानकारी का बांध ही तोड़ दिया। अब किताबें बहुत तेजी से, ज्यादा संख्या में और सस्ते में छप सकती थीं।
हाँ, और इसका नतीजा, मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों के विचार हफ्तों में पूरे यूरोप में फैल गए। चर्च का जानकारी पर जो एकाधिकार था वो एक तरह से टूट गया। लोग खुद बाइबल पढ़ने लगे।
और विज्ञान में क्रांति आ गई, क्योंकि कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन जैसे वैज्ञानिक अपने प्रयोगों और नतीजों को दूर दूर तक फैला सकते थे, उन पर बहस कर सकते थे, एक दूसरे के काम को आगे बढ़ा सकते थे। ज्ञान का सामूहिक निर्माण संभव हुआ।
हाँ, और 18वीं-19वीं सदी में अखबारों और उपन्यासों ने एक और कमाल किया, राष्ट्रवाद को जन्म दिया। लोग जो शायद कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, एक ही तरह की खबरें और कहानियां पढ़कर खुद को एक काल्पनिक समुदाय या इमेजिन्ड कम्युनिटी का हिस्सा महसूस करने लगे। जैसे हम सब भारतीय हैं या हम सब फ्रेंच हैं, ये भावना वहीं से पनपी।
और अब हमें तीसरी और शायद सबसे बड़ी सूचना क्रांति के बीच, एल्गोरिदम और एआई की क्रांति।
पहले बिजली आई, टेलीग्राफ टेलीफोन ने संदेश भेजने को यात्रा से आजाद कर दिया। फिर कंप्यूटर और इंटरनेट ने लगभग सारी जानकारी को डिजिटल बना दिया। लेकिन हरारी कहते हैं, एआई इन सब से अलग है। ये सिर्फ तेजी या ज्यादा जानकारी की बात नहीं है।
क्यों अलग है एआई? क्या खास बात है इसमें? खास बात ये है, और ये सचमुच चौंकाने वाला है, इतिहास में पहली बार एक ऐसी इंटेलिजेंस आई है जो इंसान नहीं है, जिसमें चेतना कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन वो खुद नई जानकारी बना सकती है।
अच्छा,
खुद बना सकते हैं?
हाँ,
वो लेख लिख सकती है, संगीत बना सकती है, तस्वीरें बना सकती है, कंप्यूटर कोड लिख सकती है। हरारी इसे एलियन इंटेलिजेंस कहते हैं। ये सिर्फ एक औजार नहीं, ये एक नई तरह का रचयिता है।
और इससे भी ज्यादा चिंता की बात, हरारी कहते हैं कि एआई इंसानों को हैक कर सकता है।
हैक कर सकता है मतलब?
मतलब हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारे मन के झुकाव, बायास, ये सब हमारे विकास के क्रम में बने बायोकेमिकल एल्गोरिदम ही तो है। एआई बहुत सारे डेटा का विश्लेषण करके इन अंदरूनी एल्गोरिदम को हमसे भी बेहतर समझ सकता है।
ओहो, ये तो खतरनाक है।
इसका मतलब ये हुआ कि एआई हमें प्रभावित कर सकता है, हमें अपनी मर्जी से चला सकता है, चाहे वो हमें कोई चीज़ खरीदने के लिए उकसाना हो, या हमारी राजनीतिक सोच को बदलना हो, या बस हमें स्क्रीन से चिपकाए रखना हो। कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे स्कैंडल्स इसकी एक हल्की सी झलक थे, लेकिन हरारी कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत हो सकती है।
जरा सोचिए इसका लोकतंत्र और समाज पर क्या असर होगा अगर डीप फेक वीडियोस इतने असली लगने लगे कि सच झूठ का फर्क मिट जाए।
हाँ,
अगर हर किसी को सिर्फ वही खबरें दिखें जो उसके विचारों से मेल खाती हों, पर्सनलाइज्ड न्यूज फीड, तो फिर साझा सच्चाई, शेयर्ड रियलिटी कहाँ बचेगी?
सही बात है, जब हम बुनियादी तथ्यों पर ही सहमत नहीं होंगे तो मिलकर कोई फैसला कैसे लेंगे, समाज कैसे चलेगा?
किताब का अंत भविष्य की कुछ गंभीर संभावनाओं पर बात करता है। ऐसी डिजिटल तानाशाही जो हमारे विचारों और भावनाओं तक भी निगरानी कर सके, एक बेकार वर्ग यूजलेस क्लास का उभरना, क्योंकि एआई न सिर्फ शारीरिक काम बल्कि सोचने समझने वाले काम भी छीन सकता है।
और हमारी आज़ादी और फैसले लेने की क्षमता का खत्म हो जाना अगर हम अपनी जिंदगी के जरूरी निर्णय एल्गोरिथम को सौंप दें।
तो हरारी कोई आसान सा समाधान नहीं देते, बल्कि वो दुनिया भर में एआई और डेटा को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील करते हैं।
हाँ, एक वैश्विक सहयोग की जरूरत है।
बिल्कुल, सवाल हम सबके सामने है कि हम इस क्रांति को इंसानियत की भलाई के लिए सही दिशा दे पाएंगे या हम अपनी ही बनाई चीज के गुलाम बन जाएंगे।
तो इस पूरी बातचीत से, इस विशाल कहानी से हमारे लिए मुख्य संदेश क्या निकलते हैं, मतलब की टेकअवेज क्या हैं?
पहली और सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगती है कि इतिहास को आगे बढ़ाने वाली असली ताकत जानकारी है। बड़े बड़े नेता या आर्थिक शक्तियां नहीं, बल्कि जानकारी को संभालने और इस्तेमाल करने के बेहतर तरीके ही समाज को बदलते हैं। जो सूचना प्रणाली ज्यादा कारगर होती है वही जीतती है।
हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा अहम सबक है साझा कल्पनाओं या शेयर्ड इमेजिनेशंस, या जिसे हरारी इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं, उसकी ताकत। पैसा, राष्ट्र, भगवान, मानवाधिकार, ये सब असल में कहाँ हैं? ये हमारी सामूहिक सोच, हमारी कहानियों में ही तो जिंदा है।
सही का।
और इन कहानियों को कौन बनाए रखता है? सूचना तंत्र। तो जो जानकारी को नियंत्रित करता है वो एक तरह से हमारी बनाई हुई इस हकीकत को नियंत्रित करता है।
तीसरी बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि तकनीक कभी तटस्थ या न्यूट्रल नहीं होती। हर नई सूचना तकनीक आती है तो वो सत्ता के समीकरण बदल देती है। जैसे लिखने की कला ने पुजारियों और क्लर्कों को ताकत दी, प्रिंटिंग प्रेस ने सुधारकों और वैज्ञानिकों को आवाज दी, और अब एआई कुछ बहुत बड़ी टेक कंपनियों और शायद कुछ सरकारों को बेहिसाब ताकत दे रहा है।
बिल्कुल, हम भारत में भी देख रहे हैं कि कैसे डिजिटल पहुंच, डेटा किसके पास है, ये बातें मौके और ताकत को किस तरह बदल रही हैं। फर्क साफ दिख रहा है।
चौथी बात है एआई का बिल्कुल अलग होना। इसे सिर्फ एक नया बेहतर औजार समझना गलती होगी।
हाँ, वो एलियन इंटेलिजेंस वाली बात।
हाँ, हरारी इसे एलियन इंटेलिजेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद फैसले ले सकती है, खुद नई चीजें बना सकती है। हमें ये समझना होगा कि ये हमारी तरह नहीं सोचती, इसमें भावनाएं या चेतना नहीं है, फिर भी ये बहुत बुद्धिमान हो सकती है।
और जरूरी नहीं कि इसके लक्ष्य इंसानी मूल्यों से मेल खाएं, ये भी एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल। और पांचवी बात जो शायद सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्तर पर महसूस होती है, इंसान का हैक होना।
हाँ, ये बात तो आजकल बहुत महसूस होती है। एआई हमारी कमजोरियों, हमारी भावनाओं, हमारे पूर्वाग्रहों को समझकर हमें प्रभावित कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर जो बहसें, जो गुस्सा, जो ध्रुवीकरण हम देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन एल्गोरिदम्स का हाथ होता है। वो हमें वही दिखाते हैं जिससे हमें ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया मिले, ताकि हम ज्यादा समय बिताएं, भले ही वो जानकारी झूठी या नुकसानदेह क्यों न हो।
हाँ, ये हमें अपनी डिजिटल दुनिया की आदतों पर सोचने को मजबूर करता है।
वाकई इस किताब के विचारों में कुछ बहुत गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले बिंदु हैं। सीधे उद्धरण देना तो मुश्किल है क्योंकि ये हरारी के व्यापक काम का सार है, लेकिन उनके तर्कों का निचोड़ कुछ इस तरह समझा जा सकता है।
पहला विचार जो बार बार उभर कर आता है, इतिहास महान नेताओं या अर्थव्यवस्थाओं की कहानी नहीं है, ये असल में उन सूचना प्रणालियों की कहानी है जो इंसानों को संगठित करने के लिए एक दूसरे से होड़ करती हैं। जो प्रणाली जानकारी को सबसे बेहतर तरीके से प्रोसेस करती है वही जीतती है।
हाँ, ये सोच पाषाण युग से लेकर सिलिकॉन वैली तक हर जगह लागू होती है।
दूसरा दमदार विचार एआई को लेकर है। इतिहास में पहली बार एक गैर मानवीय इंटेलिजेंस हमारी भाषा पर महारत हासिल कर रही है। ये एक एलियन इकाई की तरह है जिसने मानव सभ्यता के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारी भाषा और संस्कृति तक पहुंच बना ली है।
जरा सोचे, भाषा ही तो हमारी संस्कृति, कानून, कहानियां, आपसी रिश्ते, सब कुछ का आधार है। अगर एआई इस पर नियंत्रण पा लेता है तो इसका मतलब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।
तीसरा विचार डेटा की अहमियत पर है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक और नैतिक सवाल ये है कि डेटा का मालिक कौन होगा? जिसके पास डेटा होगा उसी के पास जीवन के भविष्य का नियंत्रण होगा।
और डेटा आज के दौर का सबसे कीमती संसाधन क्यों है? क्योंकि ये हमें समझने और शायद नियंत्रित करने की चाबी है। डेटा प्राइवेसी और डेटा पर किसका हक हो, ये बहसें इसीलिए इतनी जरूरी हैं।
बिल्कुल। और चौथा जो हम शायद रोज महसूस करते हैं, हम सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया के ग्राहक हैं, लेकिन असल में हम उत्पाद हैं। हमारा ध्यान और हमारा डेटा बेचा जा रहा है।
हाँ, ये आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था का कड़वा सच है। ये प्लेटफॉर्म मुफ्त क्यों है? क्योंकि असली कमाई हमारे ध्यान और हमारी जानकारी को विज्ञापन दाताओं या दूसरों को बेचकर होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन प्लेटफॉर्म्स का असली मकसद क्या है। ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों से क्या सीख सकते हैं, मतलब इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है।
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि हमें जानकारी का एक सजग उपभोक्ता बनना होगा, मतलब कॉन्शियस कंज्यूमर। अंधे होकर कुछ भी मान लेने से बचना होगा। हरारी कहते हैं कि हमें मीडिया साक्षरता को बहुत गंभीरता से लेना होगा। खुद से पूछना होगा, मैं ये क्यों देख रहा हूँ? कौन सा एल्गोरिदम मुझे ये दिखा रहा है? ये मुझमें कौन सी भावना जगाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये जानकारी भरोसेमंद है? ये सवाल पूछने होंगे।
हाँ बिल्कुल, अपनी सूचना खुराक या इन्फॉर्मेशन डाइट का वैसी ध्यान रखना होगा जैसे हम अपने खाने पीने का रखते हैं। कोशिश करें कि अलग अलग भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी लें और ऐसी सामग्री से बचें जो सिर्फ भड़काऊ हो, गुस्सा दिलाए या समाज को बांटे। आजकल व्हाट्सएप या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जो भी आता है उसे आंख बंद करके सच मान लेना या आगे बढ़ा देना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
हाँ, शेयर करने से पहले सोचना, शायद थोड़ा जांच लेना जरूरी है।
और ये याद रखना होगा कि हम इंसान हैक किए जा सकते हैं। हम हमेशा तर्क से नहीं चलते। हमारी भावनाएं, हमारे पुराने अनुभव, हमारे पूर्वाग्रह हमें चलाते हैं। अपने इन भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना जरूरी है। डिजिटल दुनिया में कोई पोस्ट देख के तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना, सोचना, क्या ये गुस्सा या ये खुशी मेरी अपनी है या मुझे ऐसा महसूस करने के लिए उकसाया गया है।
बिल्कुल, और समाज के स्तर पर देखें तो डेटा और एआई को लेकर नियम कानून बनाने की बहुत जरूरत है, और इसमें देशों को मिलकर काम करना होगा।
हाँ, वैश्विक स्तर पर।
और हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी बदलना होगा। बच्चों को सिर्फ जानकारी रटाने के बजाय उन्हें आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना होगा, मतलब सही गलत की परख करना,
संवाद,
कम्युनिकेशन,
हाँ,
दूसरों से ठीक से बात करना, सहयोग, कोलैबोरेशन, मिलकर काम करना, और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचना, ये कौशल सिखाने होंगे। ये 4 C's शायद वो चीजें हैं जो इंसान एआई से बेहतर कर सकते हैं।
और हाँ, लोकतंत्र को बचाना है तो हमें सच और आपसी बातचीत के माहौल को बचाना होगा। वो साझा जमीन जरूरी है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि हम जिस दुनिया को हकीकत समझते हैं वो काफी हद तक जानकारी, कहानियों, कानूनों, डेटा से ही बनी है। और अब इस हकीकत को बनाने की प्रक्रिया में एक नया, बहुत शक्तिशाली, गैर मानवीय खिलाड़ी आ गया है। यह हमें मजबूर करता है कि हम तकनीक को सिर्फ एक औजार की तरह न देखें, बल्कि एक ऐसी ताकत की तरह देखें जो हमारी प्रजाति और हमारे ग्रह को नया आकार दे रही है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि भविष्य पहले से तय नहीं है। हम इन तकनीकी बदलावों के सिर्फ मूक दर्शक या शिकार नहीं है। एआई का भविष्य कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर और दुनिया के तौर पर क्या चुनाव करते हैं। हरारी के ये विचार हमें उन चुनावों को समझदारी से करने के लिए जरूरी सोच और समझ देते हैं। ये एक तरह से हमें जगाने की कोशिश है कि हम समझें कि दांव पर क्या लगा है और सोच समझकर कदम उठाएं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।